भाग दसवां, स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन यह सर्वोच्च साध्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन। स्वतंत्रता का महत्व मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितांत आवश्यक होता है और व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रटेन रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। मनुष्य का संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी का कथन है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते, अतः आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी व्यक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहता है उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। स्वतंत्रता का अर्थ आधुनिक युग में स्वतंत्रता शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लगा लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। आध्यात्मिक संत स्वतंत्रता का अभिप्राय सांसारिक मोहमाया के मुक्ति होने से लेते हैं और प्रतंत्र देश स्वतंत्रता का स्वराज्य की पर्यावाची समझते हैं। किंतु व्यवहार में प्रचलित स्वतंत्रता के इन विविध अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दोनों विरोधी तत्वों, बंधनों का अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। और इनकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति को इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचे। 1779 की मानवीय अधिकार घोषणा में यही कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्ति को आघात ना पहुंचे। सीले, लॉक्सी, मैकेजी आदि विद्वानों ने भी स्वतंत्रता की परिभाषा लगभग इसी प्रकार से की है। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। प्रोफेसर लॉस्की के शब्दों में स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। मैकेजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। सीले, फ्रीमैन और मैकेजी आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता की जो परिभाषाएं की गई हैं उसमें स्वतंत्रता का चित्रण अनुचित प्रतिबंधों का अभाव या उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था के रूप में दिया गया है, और इस प्रकार ये परिभाषाएं स्वतः स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को प्रकट करती हैं। किंतु जैसा कि गेटल ने कहा है, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। स्वतंत्रता के सकारात्मक या वास्तविक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बताते हुए टी एच ग्रीन ने लिखा है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम ही नहीं है। आगे चलकर ग्रीन ही स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। स्वतंत्रता के इसी रूप की व्याख्या करते हुए लॉस्की ने कहा है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिनमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। इस प्रकार सकारात्मक रूप में स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता से है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। उपयुक्त विवेचना के आधार पर स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं। पहला, न्यूनतम प्रतिबंध। स्वतंत्रता का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। दूसरा, व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अतः स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। स्वतंत्रता के विविध रूप। फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेक्यू ने एक स्थान पर कहा है कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक रूप या अर्थ हो सकते हैं और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। मॉन्टेक्यू ने इस कथन का कारण यह है कि राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता के विविध रूप प्रचलित हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न लेता है किंतु सर्वत वह बंधनों से बंधा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता के प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा पूर्णतः भ्रात्मक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत्स्य न्याय का व्यवहार प्रचलित होगा और परिणामतः समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता जिस समाज के अंतर्गत स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर आधारित हो, वहां निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित रखना नितांत आवश्यक है। इस धारणा की आलोचना की जाने पर भी कि इसका पर्याप्त महत्व है, यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती हैं तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन शक्तियों के विकास पर ही निर्भर करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को इन शक्तियों के विकास हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करे। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार इस रूप में माने है कि व्यक्ति समान है और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। इसमें संदेह नहीं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति के कौन से कार्य स्वयं उससे ही संबंधित हैं, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। और अनेक बार ऐसे भी अवसर उपस्थित हो सकते हैं जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शालीनता और व्यवस्था के हित में ही व्यक्ति की भोजन संबंधी, वस्त्र संबंधी और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना पड़े। समाजवादी विचारधारा का तो आधार ही यह है कि व्यक्ति के सभी कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डालते हैं, अतः समाज के पास इन कार्यों को नियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रह गई है, यद्यपि इस विचार से इतनी सत्यता अवश्य ही है कि जिन कार्यों का संबंध किसी एक व्यक्ति से हो उनके विषय में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है, अतः स्वभाव से ही यह स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, पहला शासन के विरुद्ध व्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है। नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदायों और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है। साधारणतः नागरिक स्वतंत्रता का स्तर सभी राज्यों में एक सा नहीं होता। सोवियत रूस के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, तो पश्चिम प्रजातंत्रों के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। वस्तुतः जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। चौथा, राजनीतिक स्वतंत्रता। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लॉस्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। लिकॉव, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लेते हैं, जिसका विस्तार से अर्थ है कि जनता अपने शासक को अपनी इच्छा अनुसार चुन सके और चुने जाने के बाद ये शासक उनके प्रति उत्तरदायी हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, मतदान देने का अधिकार। दूसरा, निर्वाचित होने का अधिकार। तीसरा, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। और चौथा, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। इन अधिकारों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातंत्रात्मक देश में ही प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के उपयोग से ही समाज का निर्माण संभव होता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा संभव हो सके। पांचवा, आर्थिक स्वतंत्रता। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके। लॉस्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्त की अपेक्षा व्यक्ति की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल को आवश्यकता से मुक्त रखा जाना चाहिए। कुछ विचारक आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना से ही लगाते हैं। उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना का अर्थ यह है कि एक श्रमिक अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं, वह उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी है। कुछ भी हो, उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना श्रमिक वर्ग के हित का एक साधन ही है, और मूल रूप में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि और गंभीर आर्थिक विषमताओं के अंत से ही है। छेमा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रियों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और अन्य किसी राज्य के अधीन ना हो। किंतु जिस प्रकार की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता भी दूसरे राष्ट्र की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है। संपूर्ण मानवता के हित में ऐसा होना भी चाहिए। सातवां, नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से प्रतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता की वास्तविक व महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। कांट के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके तथा कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। वैसे तो सभी प्रकार के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता का आवश्यकता होती है, किंतु लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतंत्रता नितांत आवश्यक ही है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता का संबंध स्पष्ट करने के पूर्व इन दोनों का तात्पर्य समझ लेना चाहिए। पहला, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है, अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया जा सके, या दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके, उसे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के दो अर्थ बताए जा सकते हैं। इसका पहला अर्थ यह है कि संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएं आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए, और जब तक सभी व्यक्तियों को अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट न कर जाएं, तब तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। लॉस्की के शब्दों में, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। आर्थिक समानता का दूसरा तात्पर्य उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना से है। एक श्रमिक केवल अपने श्रम के बेचने वाला ही नहीं, वरन इसके साथ साथ उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित। यह ठीक ही कहा गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार आर्थिक समानता है। राजनीतिक स्वतंत्रता मूल रूप से तीन अनिवार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पहला, जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो। दूसरा, शिक्षित व्यक्ति होने चाहिए ताकि वे स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकें और शासन की रचनात्मक आलोचना कर सकें। शिक्षा का आवश्यकता इस कारण और अधिक हो जाती है, केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। तीसरा, राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएं और विचारों की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए स्वस्थ और सबल प्रेस नितांत आवश्यक है। उपयुक्त तीनों ही परिस्थितियों की विद्यमानता के लिए आर्थिक समानता नितांत आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उसी समय से रुचि ले सकता है जबकि उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन हो। एक निर्धन व्यक्ति का धर्म, ईमान और राजनीति सभी कुछ रोटी तक सीमित हो जाता है, और पंडित नेहरू के शब्दों में कहा जा सकता है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को साधारण कार्य व्यापार से इतना अवकाश प्राप्त होना चाहिए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में विचार कर सकें, और यह भी आर्थिक समानता की स्थापना से ही संभव है। वर्तमान समय में जिन राज्यों के अंतर्गत धनी और निर्धन का भेद गंभीर रूप से विद्यमान है। वहाँ पर निर्धन व्यक्तियों के लिए ना तो मताधिकार का कोई महत्व है और ना ही प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के अधिकार का। इन दोनों ही बातों के संबंध में धनी व्यक्ति निर्धन को अपनी इच्छा अनुसार दबा लेता है और आर्थिक समानता के अभाव के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। यद्यपि साधारण व्यक्ति के पास अपना सामान्य जीवन बिताने के ही साधन नहीं है तो वह शिक्षित होने का विचार कैसे कर सकता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करने में नितांत असमर्थ है। इसी प्रकार आर्थिक समानता के आशय के अभाव में प्रेस और विचार एवं अभिव्यक्ति के सभी साधनों पर धनिक वर्ग का अधिकार हो जाता है और यह धनिक वर्ग इन साधनों का प्रयोग करने को सही सही जानकारी एवं शान प्रदान करने के लिए नहीं वरन एक प्रकार से अपने विचार दूसरे पर थोपने के लिए करता है। इस प्रकार आर्थिक समानता के अभाव में धनी वर्ग निर्धन वर्ग के जीवन पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, जो निर्धन वर्ग का मनमाने तरीके से शोषण करने लगते हैं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का भी वास्तविक नहीं हो सकती। लॉस्की ने ठीक ही कहा है कि यदि राज्य संपत्ति को अधीन क्यों रख नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। उपयुक्त विवेचन से कोल के इस कथन की सत्यता नितांत स्पष्ट है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। लॉस्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। स्वतंत्रता और कानून का संबंध। स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद है। एक और तो कुछ विद्वानों और विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताते हुए कहा गया है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित होती जाएगी। दूसरी ओर अनेक विचारकों द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून की विद्यमानता नितांत आवश्यक है और कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, कमी नहीं। प्रथम विचार का प्रतिपादन अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक साम्यवादी विचारधारा द्वारा किया गया है। अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने का कारण व्यक्तियों के इच्छा अनुसार कार्य करने में बाधक होते हैं। अतः स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इससे आगे चलकर वह यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्माणी संस्था का अंत होना चाहिए। विलियम गॉडविन के शब्दों में कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। इस विचारधारा के आधार पर डाइसी ने कहा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत भी कानून को उच्च वर्ग के हितों का लाभ पहुंचाने का एक साधन कहा गया है और इसी कारण वर्गहीन समाज की आदर्श व्यवस्था में राज्य के विलुप्त हो जाने की कल्पना की गई है। किंतु वर्तमान समय में स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर अराजकतावाद, व्यक्तिवाद और साम्यवाद की धारणा को स्वीकार किया नहीं जा सकता। वर्तमान समय में तो उपयुक्त धारणा के नितांत विपरीत इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते वरन स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। लॉक के शब्दों में जहाँ कानून नहीं होते वहाँ स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। उपयुक्त मत को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर रिची ने कहा है कि व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। जब कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर हो। लॉक और प्रोफेसर रिची से आगे बढ़कर हॉकिंग ने तो यहाँ तक कहा है कि व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लॉक, विलोबी, रिची, हॉकिंग आदि विद्वानों द्वारा व्यक्त विचार बहुत कुछ सीमा तक सही है और कानून निम्नलिखित तीन प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। पहला, राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। यदि समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कानून ना हो तो समाज के शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करेंगे और संघर्ष की इस अनवरत प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। दूसरा, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। साधारणतः वर्तमान समय के राज्यों में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। इन दोनों प्रकार के कानूनों में से संवैधानिक कानून द्वारा राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षित करने का कार्य किया जाता है। भारत और अमेरिका आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह इस संबंध में श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि राज्य इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। तीसरा, स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कानून व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करते या दूसरे शब्दों में उन्हें सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा जल कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है और राज्य कानूनों के माध्यम से ऐसे वातावरण के निर्माण में संलग्न है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। राज्य द्वारा की गई शिक्षा व्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम वेतनों के संबंध में कानूनी व्यवस्था, कारखानों में स्वस्थ जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था और जन स्वास्थ्य का प्रबंध आदि कार्यों द्वारा नागरिकों को व्यक्ति के विकास की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और इस प्रकार राज्य नागरिकों को वह सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है जिसे ग्रीन ने ना करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता के नाम से पुकारा है। यदि राज्य सड़क पर चलने के संबंध में किसी प्रकार के नियमों का निर्माण करता है, मद्यपान पर रोक लगाता या अनिवार्य शिक्षा और टीके की व्यवस्था करता है तो राज्य के इन कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती वरन उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साधारण रूप में राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। सभी कानून स्वतंत्रता के साधक नहीं, लेकिन राज्य द्वारा निर्मित सभी कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती कि वे मानवीय स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। यदि शासक वर्ग अपने ही स्वार्थों की दृष्टि में रखकर कानूनों का निर्माण करता है, जनसाधारण के हितों की अवहेलना करता है और बिना किसी विशेष कारण के व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता सीमित करता है, तो राज्य इन कानूनों से व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं सीमित हो जाती हैं। उदाहरणतः हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया था उसमें अधिकांश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी थे। इस प्रकार वर्तमान समय में साम्यवादी देशों की सरकारों द्वारा साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य दलों को संगठित न होने देने और नागरिक द्वारा सरकार की आलोचना न कर सकने की जो व्यवस्था की गई है उससे इन साम्यवादी देशों के नागरिक स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कानून नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि नहीं करते, वरन एक ऐसा केवल उन्हीं कानूनों के संबंध में कहा जा सकता है जिनके संबंध में लॉस्की के शब्दों में व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूं और उनका पालन कर सकता हूं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि राज्य का कानून की इच्छा पर आधारित है जो स्वतंत्रता का पोषण होगा, और यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो वह स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। स्वतंत्रता के संरक्षण स्वतंत्रता प्राप्त करने से अधिक कठिन कार्य स्वतंत्रता को बनाए रखना है। इस बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों के संबंध में पूर्णतः सत्य है। जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता पर ठीक से उपभोग नहीं कर पाते और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते उनकी स्वतंत्रता को सदैव ही संकट बना रहता है। विभिन्न लेखकों के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ खास दशाओं का होना आवश्यक और वांछनीय है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, आदर्श कानून। व्यक्ति अपनी विविध स्वतंत्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार साधारणतः कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, किंतु राज्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कानून के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं की जा सकती। अतः स्वतंत्रता की रक्षा की लिए राज्य द्वारा ऐसे आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान कर सके। स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए मॉन्टेक्यू ने कहा है कि मुख्यतः स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा दिए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरा, विशेषाधिकार का अंत। जिस समाज में कुछ व्यक्तियों को धर्म, जाति या संपत्ति के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वहां पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो पाती है। जिन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वे अहभाव के कारण उनका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोग हीनता की भावना के कारण इन स्वतंत्रताओं का उचित उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विशेषाधिकारों का अंत नितांत आवश्यक है। लॉस्की के शब्दों में यदि समाज में किसी भाग को विशेषाधिकार दिए गए हैं तो उस दशा में जनसाधारण स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। तीसरा, लोकतंत्रीय शासन। व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता है, किंतु यदि लोकतंत्रीय शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो पाता है। लोकतंत्र में जनता शासित होने के साथ साथ शासक भी होती है और शासक की अंतिम सत्ता जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतंत्रात्मक शासन ही सर्वोच्च समझा जाता है, परंतु यह लोकतंत्रात्मक शासन के साथ साथ यह आवश्यक है कि जनता में भी लोकतंत्रीय भावना हो, अर्थात बहुमत से न्यायप्रियता और अल्पमतों में सहनशीलता का भाव होना चाहिए। चौथा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार होते हैं जिनका उपयोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप में नहीं वरन राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक समझा जाता है। इसी दृष्टि से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैंड, फ्रांस आदि राज्यों के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। पांचवा, स्वतंत्र न्यायालय। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि न्यायालय स्वतंत्र हों, न्यायालयों के कार्यों में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ना हो। इस प्रकार की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायालयों के व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अधीन होने पर शासन सत्ता में हस्तक्षेप से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त न्याय सृजन सुलभ और शीघ्र होना चाहिए और निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता एक ढकोसला बनकर रह जाती है। छठा, स्वतंत्र जागरूकता। स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत जागरूकता ही है। इसके लिए नागरिकों में स्वतंत्रता की इच्छा मात्र ही नहीं वरन इसकी रक्षा हेतु प्रत्येक प्रकार के त्याग करने की भावना भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और स्वतंत्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध करें। इंग्लैंड के नागरिकों द्वारा तो सतत जागरूकता के कारण ही इतनी अधिक स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। कहावत भी है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। लॉस्की के शब्दों में नागरिकों की महान भावना ना कि कानून की शब्दावली स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। इस सब संबंध में थॉमस जेफरसन के शब्द महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक वह समय समय पर वहां की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग करती रहे। सातवां, शक्तियों का पृथकीकरण तथा अवरोध और संतुलन। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ सीमा तक शक्ति पृथकीकरण तथा कुछ सीमा तक अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। शक्ति पृथकीकरण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकीकरण को रोका जाना चाहिए तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही वहां तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध है। अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे स्वतंत्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक प्रकार से उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। आठवां, आर्थिक न्याय। यदि हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो हमारे द्वारा जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती और यह वास्तविकता है कि बहुत अधिक सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना के बिना स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं। जब तक व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक यह कैसा कहा सोचा जा सकता है कि वे स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। अतः आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गारंटी है। इसके बिना स्वतंत्रता एक ही वर्ग का हित बनकर रह जाती है। नौवां, स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्र प्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। यदि समाचार पत्र स्वतंत्र हैं तो उनके द्वारा शासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है। जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। स्वतंत्रता का सार मानवीय चेतना और मानवीय चेतना के विकास का सर्वप्रमुख साधन स्वतंत्र प्रेस है। दसवां, स्थानीय शासन। नागरिकों के स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और उन्हें स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में स्थानीय स्वशासन द्वारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। लॉस्की के विचार में राज्य में सत्ता की जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना अधिक विकेंद्रीकरण उसकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा।